हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी पधारे हैं। हम आप सभी आपका एक हाथ की ताली से बहुत बहुत इस क्लास में स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी ने मेडिकल की पढ़ाई राजस्थान यूनिवर्सिटी से पूरी की और 91 से 2000 तक आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। साथ ही साथ आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के स्वास्थ्य सेवाओं में भी आपका विशेष योगदान रहा। आप पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान आपने राजस्थान के अनेक स्थानों पर अलौकिक सेवाएं भी की। 1998 में आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और बाबा के बेहद यज्ञ में पिछले कई वर्षों से सेवाएं कर रहे हैं। वर्तमान समय आप वुमन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अनेक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वुमन कॉन्फ्रेंसेस आपके कुशल नेतृत्व में सफल आयोजित हुई। आप बाबा के बहुत ही निरहंकारी बहुत हर्षित मुख बाबा के ऐसे रतन हैं जिनके चेहरे से भी बहुत सेवा होती है। आपकी रूहानी मुस्कान से अनेक आत्माओं को सहज ही बाबा का परिचय मिल जाता है। तो कुछ शब्द मैं आपके लिए कहूंगी। सुप्रीम सर्जन के रूहानी हॉस्पिटल में आप डबल डॉक्टर बन डबल इलाज करते हैं। दवा से तन का, दुआ से मन का और रूहानी मुस्कान से अनेक आत्माओं का दुख हर लेते हैं। ऐसे आदरणीय दीदी जी से आज हम सबको क्लास करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज आपकी क्लास का बहुत सुंदर विषय भी है प्योरिटी की रॉयल्टी एवं पर्सनैलिटी। अभी हम सुनेंगे आदरणीय सविता दीदी जी से।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी जब से ब्राह्मण बनते हैं तभी से बाबा हमें कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। ये हमारा महामंत्र है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, फाउंडेशन है, महानता है, श्रेष्ठता है, जो कहो। यही एक विशेष धारणा है जो हमें अन्य सत्संग से अलग करती है। और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, ऐसे तो दुनिया में बहुत पर्सनैलिटीज होते हैं, शारीरिक पर्सनैलिटीज भी होती हैं जिनका विशेष शारीरिक व्यक्तित्व सौंदर्य होता है। वो प्रतिस्पर्धाओं में जीतते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिसेस वर्ल्ड, अनेक प्रकार की ऐसी प्रतियोगिताएं होती, मिस्टर वर्ल्ड, तो वो भी नामी ग्रामी होते हैं और वर्ल्ड में पर्सनालिटीज के रूप में जाने जाते हैं। पद की भी पर्सनालिटीज होती हैं, उच्च पद पर जो भी लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और भी मंत्री जो भी होते हैं, ऐसे अन्य अनेक भी, वो भी पर्सनालिटीज के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे धन की भी पर्सनालिटीज हैं, जो दुनिया में सबसे अमीर लोग, उनका भी नाम होता है। जैसे कहेंगे बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफे हैं, हमारे इंडिया में अंबानीज हैं, टाटा बिरला हैं वो भी पर्सनालिटीज हैं। तो हम बाबा के बच्चे वो कोई विनाशी पर्सनालिटी वाले नहीं हैं। हमारी पर्सनालिटी रूहानी पर्सनालिटी है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी माना रूहानी पर्सनालिटी है। उन लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, वो दुनिया के जो वीआईपी पर्सनालिटीज हैं उस लिस्ट में शायद ब्राह्मण नहीं है, लेकिन भगवान की लिस्ट में हमारा नाम है। तो जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है, बाबा कहता है संपूर्ण पवित्रता से उसकी झलक और फलक हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। कोई भी आत्मा जब हमारे संपर्क में आती है तो वो उस प्यूरिटी को अनुभव करती है, और हमारी जो पवित्रता है वो पवित्रता परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट विधि से दी गई पवित्रता है। कोई महान आत्मा के द्वारा या कोई सन्यासी के द्वारा बताई गई विधि नहीं है, लेकिन स्वयं परमात्मा ने हमें वो विधि दी कि मैं हूं ही आदि अनादि पवित्र श्रेष्ठ आत्मा, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। और हम केवल एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक सत्ययुग त्रेता में पवित्र रहे हैं, पवित्र प्रवृत्ति में रहे हैं, और इस स्मृति ने समर्थी दिला दी, हिम्मत रखी बाबा की मदद और साथ में स्मृति से समर्थी स्वरूप बने, तो पवित्रता की धारणा हमारे लिए सहज हो गई। दुनिया में भी लोग पवित्र रहते हैं कई, खासकर जो सन्यासी होते हैं, या वैसे भी कई लोग अपनी इच्छा से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वो अपनी विधियों से करते हैं। जितने भी सन्यासी हुए ज्यादातर उन्होंने स्त्री को मां के रूप में देखने की कोशिश की, खासकर रामकृष्ण परमहंस जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले ही उनकी शादी तय हो चुकी थी। उस जमाने में इस उम्र में ही लोग, उम्र भी क्या, जन्म से पहले ही माँ बाप बच्चों के लिए कि अगर तुम्हारे बेटा हुआ और हमारी बेटी हुई तो उनकी शादी हम करेंगे, या फिर बहुत शिशु अवस्था में ही। लेकिन उनकी रुचि सांसारिक जीवन में नहीं थी, लेकिन उनको जब पता चला कि हाँ मेरी तो जन्म से पहले ही शादी तय हो चुकी है और मुझे उस प्रवृत्ति में, मतलब उनकी जिम्मेवारी को निभाना ही है, तो फिर हमेशा उन्होंने अपनी पत्नी को माँ कहकर संबोधित किया, शारदा माँ के रूप में ही उनका यादगार है। और ऐसे ही महात्मा गांधी को जब आजादी के लिए महसूस हुआ कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तब मेरे अंदर वो बल होगा, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पत्नी को जब माँ का दर्जा दिया, कस्तूरबा, कस्तूरबा के नाम से ही वो प्रसिद्ध है, गुजराती में बा माना माँ को कहते हैं, और इस विधि से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन बाबा ने हमें ये विधि नहीं बताई, ब्रह्मा बाबा ने अपनी पत्नी को माँ नहीं कहा, लेकिन बाबा ने अपनी पत्नी को बच्ची कहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो खुद ही इस जगत की माँ है, हमारी बड़ी माँ है। कितनी मुरलियों में बाबा कहते हैं मम्मा जो है वो संभालने के निमित्त है, जगदम्बा जो है, लेकिन जो असली हमारी माँ है, जगत की माँ है, वो कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो उनके आगे तो उनकी पत्नी बची ही हो गई। सरस्वती भी ब्रह्मा की बेटी है, और हम सब ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। तो ये विधि बाबा ने हमें दी, और आत्मा रूप में भाई बहन भी नहीं, भाई भाई। तो बाबा ने हमें तो शरीर की सीमाओं से ही परे उठाया कि अगर हम भाई बहन भी समझते हैं तो हो सकता है कभी भाई बहन के संबंध में दृष्टि वृत्ति चली जाए। आज कलयुग की दुनिया है, ऐसा वातावरण है, हम देखते हैं ऐसे किस्से होते भी रहते हैं, तो वो भी मार्जिन ना रहे, इसीलिए बाबा ने हमें उससे भी ऊपर उठाया कि आत्मा तो पुरुष है और चाहे वो स्त्री के तन में है चाहे वो पुरुष के तन में है, लेकिन आत्मा रूप में जो हमारा संबंध है वो भाई भाई का है। तो अगर ये स्मृति हमारी निरंतर है, अब स्मृति विस्मृति के खेल में हम ब्राह्मण चलते हैं, अगर स्मृति स्वरूप है तो सदा ही हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध है। आत्मिक दृष्टि माना शुद्ध दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि। और यदि हम आत्मिक दृष्टि से भूल जाते हैं और एक दो को देह के रूप में देखने लगते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, आपस में ही नहीं लेकिन दुनिया के संबंध संपर्क व्यवहार में भी हम आते हैं, क्योंकि हम सब प्रवृत्ति में हैं, तो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी हम करते हैं दुनिया से ही हमारा व्यवहार चलता है। और यदि हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो फिर दैहिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है, वो मार्जिन हो जाती है। और इसीलिए कईयों की शिकायत होती है कि जब दैहिक दृष्टि आ जाती है तो फिर दृष्टि वृत्ति थोड़ी चंचल भी होती है। और बाबा इस बात को बहुत बहुत डबल डबल अंडरलाइन कराते हैं। बाबा कहते हैं कि एक बार प्रतिज्ञा की और उसके बाद अगर भूल होती है तो फिर वो महा महा पाप की श्रेणी में आ जाता है। वैसे इतना दंड नहीं होता लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद एक का 100 गुना दंड। बाबा कहता है जो अब तक का पुण्य जमा होता है वो पुण्य हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे योग अग्नि विकर्म विनाश करती है, ऐसे ही कई बार बाबा ये बात कहते हैं मुरली में कि ये जो काम अग्नि है आपके पुण्य कर्मों का नाश कर देती है। दोनों ही अग्नि है और दोनों के अलग अलग तरह से विनाश करने के कार्य हैं। और कई बार बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। तो आत्मा की स्थिति जो है वो इतनी कमजोर हो जाती है। तो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं लेकिन ब्रह्मचारी बनना है। संपूर्ण पवित्रता बाबा कहता है मन वचन कर्म तीनों स्तर पर पवित्रता हो। ब्रह्मचर्य केवल कर्म के स्तर पर है लेकिन वाणी में भी और फिर मनसा में भी कभी भी अपवित्रता के संकल्प ना चले। उससे भी आगे बाबा कहता है स्वप्न में भी, क्योंकि अगर मनसा में चलेगा तो उसका प्रभाव स्वप्न पर आता है, तो स्वप्न में भी कभी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन ना हो और कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या घृणा या आवेश के वश कर्म ना हो। सभी विकारों में फिर काम क्रोध तो साथी हैं ही हैं। कोई भी विकार के अंश वंश के वशीभूत होकर के भी अगर कर्म होता है तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं। स्टेप्स हैं, एक एक सीढ़ी है पवित्रता की। हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक है वो हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। और फिर इसके आगे बाबा कहते हैं दिनचर्या हमारी, जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या मिली हुई है वो अमृत वेले से लेकर रात तक, अगर वो दिनचर्या में हम एक्यूरेट चलते हैं तो पवित्रता है। और अगर दिनचर्या ऊपर नीचे होती है तो उसमें भी हम कहेंगे कि अपवित्रता का अंश हो गया। उसके भी आगे बाबा कहता है व्यर्थ, नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव तो शायद इतने अब नहीं भी चलते होंगे, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं समर्थ की बजाय तो वो भी अपवित्रता का अंश है। और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो अगर हम दुख में आ जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, वो भी अपवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा इतनी गहरी है, ब्राह्मण जीवन में, जिसको हम बेहद की पवित्रता कहेंगे, ना साधारणतया नहीं है, और इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी बाबा कहते हैं। तो फिर अगर हम विकारों के अंश वंश की बात करते हैं, तो काम विकार का अंश, हाँ मोटे रूप में तो हम सब ब्राह्मण त्याग देते हैं काम विकार को, हाँ लेकिन अंश वंश बाबा कहता है किसी भी आत्मा से प्रभावित होना, किसी भी रूप में प्रभावित होने अर्थात उसके झुकाव में आ जाना, थोड़ा बहुत हमें अच्छा लगता है ये, मना स्नेह है तो सबसे स्नेह है, लेकिन किसी से थोड़ा एक्स्ट्रा स्नेह है। अब हरेक की पर्सनालिटी में कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है जो हमें प्रभावित करती है, और बाबा के बच्चे तो खास कोई ना कोई विशेषता लिए हुए आत्माएं ही हैं। तो अगर हम उस प्रभाव में आ जाते हैं, चाहे वो उसका व्यक्तित्व है, चाहे वो उसका स्वभाव है, चाहे उसकी सेवा करने का तरीका है, चाहे उसका ज्ञान है या कोई कलाएं हैं, कुछ भी हो सकता है, या कोई हमें समय पर सहयोग देता है, हमारे दिल की बात समझते हैं और उस अनुसार हमें मदद करते हैं, उस आत्मा के प्रति भी मेरा अपना है ये भाव है ना। फिर कई बार हम क्या सोचते हैं कि बाबा तो है लेकिन बाबा तो निराकार आकार है ना, हमेशा तो उनसे बात नहीं कर सकते, कोई तो चाहिए जीवन में जिससे हम दिल की बात कर सकें, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, जो समझते हैं कि नहीं किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, बाबा ही काफी हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा 50-50 है, तो बाकी लोगों को अभी भी कोई ना कोई तो चाहिए जो दिल की बात सुने, कोई तो कंपेनियन कंपनी हो हमारी, कोई तो साथी हो। तो इसका मतलब बाबा से अभी तक हमने सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है, उस रस का अनुभव अभी दिल को नहीं है। तो जिस संबंध की मुझे कमी महसूस होती है वो संबंध मैं मनुष्यों से प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। और बाबा कहता है संपूर्ण पवित्रता माना कंपनी और कंपेनियन सिर्फ बाबा, एक बाप दूसरा ना कोई। अगर किसी दूसरे मनुष्य से संबंध जोड़ा तो वो भी काम विकार का अंश बाबा कहता है, कामना है मेरी, कोई ना कोई कामना है ना उससे, तभी तो हम वो संबंध जोड़ रहे हैं। तो कामना भी काम विकार का अंश है, ये प्राप्त होना चाहिए, ये मेरे जीवन में चाहिए। तो फिर अगर हम ऐसे झुकाव में आते हैं किसी मनुष्य के, तो धीरे धीरे लगाव में आ जाते हैं, और लगाव जैसे ही हुआ हमारा, अब हमारा बुद्धि योग उस आत्मा के साथ लगता है, बाबा के साथ कम लगता है। मानो हम योग में बैठते हैं तो योग के समय फिर कौन याद आता है? बाबा कम याद आता है, वो आत्मा का स्नेह देना, उस आत्मा का सहयोग देना, उस आत्मा से जो हमने समय बिताया, वो सारी बातें जो हैं वो मन में चिंतन ज्यादा चलेगा। तो जो बाबा से शक्ति का अनुभव हमें होना चाहिए, जो बाबा से प्यार का अनुभव हमें होना चाहिए, जो बाबा की अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियां, जो हम संगम युग की प्राप्तियां कहते हैं, उस प्राप्ति से हम वंचित होने लग जाते हैं, आत्मा अंदर से खाली होने लगती है। क्योंकि भरपूर किससे होते हैं? देने वाला दाता कौन है? उस आत्मा को भी ऐसे बनाने वाला कौन है? गुण और विशेषताएं देने वाला कौन है? और इसीलिए बाबा कहता है हमेशा बीच में किसको रखना है, प्रवृत्ति में भी पवित्रता की विधि क्या है, जो साधु संन्यासियों ने बहुत मुश्किल समझा और कभी भी अपने फॉलोअर्स को वो पवित्रता की धारणा की राय नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे कहेंगे आग और कपूस जो है वो साथ में रहते हुए पवित्र नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने गृहस्थ में रहते हुए हम सहज पवित्र रह सकते हैं, वो इतनी सहज विधि हमें दी है कि स्वयं बाबा बीच में है। हमारे बीच में कौन है? और जो पवित्रता का मेरा स्वभाव है, मेरा स्वधर्म है, वो मैं हूँ, वो स्मृति भी बाबा ने हमें दिलाई है। फिर तीसरी स्मृति दिलाई है, कितनी ऊंची प्राप्ति है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं बाबा ने बच्चों को प्रलोभन भी दिया है कि वो हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आए हैं, विश्व की बात सही, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर। तो इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए अगर थोड़ा सा त्याग किया तो क्या बड़ी बात है, है ना? उस आधार पर हमारे लिए घर ग्रस्त में रहते हुए भी पवित्र रहना सहज है, मुश्किल है? सभी ज्यादातर प्रवृत्ति वाले ही बैठे हैं ना यहाँ पर, तो क्या कहेंगे, सभी अनुभवी हैं। तो हमेशा बीच में बाबा है। अगर कोई भी आत्मा मुझे आकर्षित करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, हरेक के गुण विशेषताएं होते हैं, कर सकती है, लेकिन ना उनके गुणों के आकर्षण में, ना उनके व्यक्तित्व के आकर्षण में आना है, लेकिन याद आए कि बनाने वाला कौन है, उनके गुणों की खुशबू लो, ऐसे गुण मुझ में भी होने चाहिए, भले ही हम उनसे इंस्पायर हों कि देखो कितनी अच्छी विशेषताएं हैं, ऐसी विशेषताएं हमें भी अपने जीवन में धारण करनी है, लेकिन उनके प्रति लगाव में नहीं आना है। तो ये हुआ काम विकार का अंश वंश, जो कहीं ना कहीं माया इस रूप में दांव लगाती रहती है। फिर कई बार ऐसे भी कहते हैं हम कलयुगी वातावरण में रहते हैं तो अन्य आत्माओं का प्रभाव, जो तमोगुणी है, उनका हम पर पड़ जाता है, तो हमारी दृष्टिवृत्ति चंचल होती है। तो बाबा कहता है कि पवित्रता की शक्ति बड़ी है या अपवित्रता की शक्ति बड़ी है, क्योंकि आज मीडिया भी ऐसा है और हमारे हाथ में ही दुनिया है। ऐसा हम कहेंगे अगर स्मार्टफोन मेरे हाथ में है तो हाथ में ही पूरी दुनिया है, तो कभी भी हम नेट पर जा सकते हैं, कभी भी हम टेलीविजन खोल सकते हैं, कभी भी हम व्हाट्सएप और ये जो भी फेसबुक है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती ही हैं उससे संबंधित, और उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। पहली बात तो हमें देखना सुनना ही नहीं है, श्रीमत है बाबा की, पर चलो कोई कारण बनता है, हमारा कारोबार ऐसा है या जो भी हम सेवा के लिए उस माध्यम को प्रयोग करते हैं, हमारा लक्ष्य अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो नेगेटिविटी आती है, तो फिर जब भी हम संबंध संपर्क में भी आते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो मेरी पवित्रता की शक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि वो दूसरे की अपवित्रता को समाप्त कर सके। हम विश्व परिवर्तक हैं। बाबा कहते हैं आप प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हो, आप वायुमंडल वाइब्रेशंस को भी चेंज करने वाले हो। किसकी जिम्मेवारी है? तो जो भी आत्मा, जो भी ऐसी आत्मा मेरे संपर्क में आती है, तो फिर मेरी पवित्रता की मनसा से उसका मन भी पवन हो जाए, ऐसा वो फील करे कि जब मैं इसके संग में आई तो जैसे कि मेरा मन भी शुद्ध हो गया। और ऐसे कई भाई बहनों का अनुभव भी होता है। ऐसे पहले जब ब्रह्मा कुमारी बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, आज तो अब ब्रह्मा कुमारी तो प्रसिद्ध हैं, चलो बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुए लेकिन ब्रह्मा कुमारियां तो मीडिया के कारण प्रत्यक्ष लगभग हो चुकी हैं। तो लोग सोचते थे बहनों का सेंटर है, तो कुछ लोग ज्ञान सुनने के हिसाब से नहीं, बहनें चलाती हैं तो दूसरे भाव से सेंटरों पर आ जाते थे। कभी कभी एक दो भाइयों ने हमें ऐसा अनुभव सुनाया है कि हम उस भाव से नहीं गए थे कि कोई हम ज्ञान सीखने जा रहे हैं, लेकिन बहनें रहती हैं उस भाव से हम वहां सेंटर पर गए। लेकिन जो बहन जी ने ज्ञान सुनाया और जिस तरीके से उन्होंने हमसे व्यवहार किया, तो हमने महसूस किया कि ये वो बात नहीं है, ये तो इनसे ज्ञान सुन के तो मेरा मन ही शुद्ध होता जा रहा है। और फिर वो पूरा कोर्स करके बीके भी बने, मतलब ज्ञान में भी चले, तो पवित्रता की शक्ति ने उस आत्मा के जीवन को जो अपवित्र वृत्ति से अंदर घुसी, उसके जीवन को भी परिवर्तन कर दिया। तो ये हमारी शक्ति है, ये हमारा प्रभाव है, ना कि उस वातावरण के वाइब्रेशंस का प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। तो हमें अपने को चेक करना है, क्या मेरी पवित्रता की शक्ति इतनी है। फिर क्रोध की बात आती है, क्रोध का अंश वंश किस रूप में आता है? ज्यादातर या तो ईर्ष्या के रूप में आता है या घृणा के रूप में आता है। हमारी सहन शक्ति तो अच्छी हो जाती है, बाबा के बच्चे हम बन जाते हैं तो हम सीधे सीधे बोलकर गुस्सा नहीं करते हैं। कई बार हम मन ही मन क्रोध करते हैं, हमें किसी की बात पसंद नहीं आई, या किसी ने मेरा कहना नहीं माना, या फिर ऐसा व्यवहार हमें मिला जो अपमान करने वाला है। हो जाता है, हम संगठन में आते हैं, सेवा में, संबंध संपर्क में आते हैं, कई बार ऐसा बहुत होता है। जब गुस्से की स्थिति बन जाती है तो हम चुप तो रह जाते हैं, तो मुख से तो चुप रह गए लेकिन मन से चुप नहीं रह पाते। मन से मेरी स्थिति में इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या उसकी अगर मुझे फीलिंग आ जाती है तो बाबा कहता है वो भी अपवित्रता है। सहन करने की शक्ति माना केवल मुख से नहीं लेकिन मन भी, क्योंकि हम उस राज को जानते हैं और जो राज जानने वाले हैं वो कभी नाराज नहीं होते, ऐसे बाबा कहते हैं। अगर हमने तीनों कालों के राज से उस परिस्थिति को समझा तो फिर मन ही मन जो हम नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, वो भी हमें नहीं आएगा, वो गुस्सा भी हमें नहीं आएगा, हमारे व्यस्त संकल्पों को भी हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। किसी के प्रति ईर्ष्या होती है जब हम तुलना करते हैं, या फिर जो चाहिए का भाव है कि वो आत्मा से जो मेरा मन पसंद भाव है वो पूरा नहीं हो रहा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करती है, ये ऐसे क्यों चलती है, जो भी हम चाहते हैं इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो नहीं करती है तो सूक्ष्म घृणा भाव, और अगर मान शान की बात है तो ईर्ष्या भाव, उसको मिलता है मुझे नहीं मिलता है, तो ये भी अपवित्रता है। बाबा कहते हैं पवित्रता माना तन और मन से हम सदा भरपूर और संतुष्ट अपने को अनुभव करेंगे। संतुष्टता माना मन से भरपूर, हो सकता है स्थूल में कुछ अप्राप्ति है भी सही हमें, लेकिन मन से हम भरपूर अनुभव करते हैं तो जो स्थूल अप्राप्ति है वो भी हमें अप्राप्ति जैसी नहीं लगती है। और कुछ लोगों को स्थूल में पूर्ण प्राप्ति होती है, सब कुछ जो चाहिए, फिर भी वो मन से अतृप्त होते हैं, मन से असंतुष्ट होते हैं, और लोग सोचते हैं इनके जैसा भाग्य तो किसी का भी नहीं है, फिर भी ये असंतुष्ट क्यों है। फिर जहां लोक की बात आती है तो दुनिया वालों जैसा हमारा लोभ तो नहीं होता है। ब्राह्मणों का लोभ क्या होता है? लोभ माना इच्छाएं, थोड़ी सी भौतिक इच्छाएं जो दुनिया की हैं, तो वो धन कमाना कि हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाएं, वो वाली इच्छाएं नहीं रहती। पता है अविनाशी कमाई हमारे साथ जाने वाली है, तो वो तो बल्कि अगर हमारे पास है तो वो भी समय हम बचत करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने पुरुषार्थ में लगाएं। लेकिन इच्छा होती है हमारी कि कपड़े तो कम से कम अच्छे होने चाहिए, खाना पीना तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, फिर जो भी हमारी छोटी छोटी जरूरत की चीजें हैं, मोबाइल है या वो भी जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी हम प्रयोग करते हैं अपनी दिनचर्या में, जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो कैसी होनी चाहिए वो हम तय करते हैं, और अगर वैसी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जाती है। तो कई बार बाबा कहते हैं वो जैसे सन्यासी होते हैं ना, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, घर बार सब छोड़ देते हैं, चीज वस्तुओं का भी त्याग करते हैं, लेकिन वो एक कमंडल अपने पास रखते हैं, और अगर उस कमंडल में भी मोह रह गया तो अंत समय वो ही बुद्धि को खींचेगा। सब कुछ छूट गया लेकिन क्या खींचने वाला है? लोभ और मोह ऐसे होते हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। लोभ जो है वो चाहिए, और मोह जो मेरे पास है उसमें मेरी बुद्धि जाती है, चाहे वो वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, अगर वो मेरे से छूटने की स्थिति पैदा होती है तो हमें बहुत दुख होता है, मन हलचल में आ जाता है, इसको हम मोह कहते हैं। तो अगर ये स्थिति है तो भी वो लोभ और मोह का सूक्ष्म अंश वंश है। बाबा कहता है अच्छा कपड़ा मिलता है तो भी बहुत अच्छा, और चट्टियों वाला पहनने को मिले तो भी बहुत अच्छा, सूखी रोटी मिलती है तो भी बहुत अच्छा, और 36 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं खाने को तो भी बहुत अच्छा। हर हाल में खुश, हर हाल में संतुष्ट, जिसको कहा समाने की शक्ति, एडजस्टमेंट पावर, हर स्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति में हम एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हमारा वो चाहिए चाहिए वाला खत्म हो जाता है, तब विनाश के समय जब ऐसी हलचल वाली स्थितियां होंगी, जब प्रकृति भी हमारा पेपर लेने वाली होगी, प्रकृति के पेपर इसी रूप में आएंगे कि जो हमें बहुत पसंद है वही नहीं मिलने वाला। हाँ, किसी को खाने के बाद पापड़ चाहिए ही चाहिए, मानो सभी को नहीं होता है लेकिन किसी किसी का होता है, और वो पापड़ ही नहीं मिलेगा। किसी को चाय हर हाल में चाहिए ही चाहिए, और फिर वो चाय ही नहीं मिलने वाली है, वही टेस्ट पेपर के रूप में सामने आएगा। और अगर उसने मेरी बुद्धि को अचल से हलचल में ला दिया तो बाबा कहते हैं फिर वो एक सेकंड के क्वेश्चन के पेपर में पास होंगे या फेल होंगे। तो फिर हम तो पास होने वाले हैं ना, जो भी सब बैठे हैं वो पास होने वाले हैं। एक होता है पास होना, एक होता है पास विद ऑनर। पास विद ऑनर तो चलो वो 108 और 8 वाले कहेंगे हम, पर कम से कम हम सब पास होने वाले तो हैं। तो फिर अभी से हमें वो अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास ही बाबा कहता है ऐसे अंतिम पेपर में हमें पास कराएगा। फिर अहंकार का सूक्ष्म स्वरूप आता है, हम तो देही अभिमानी हो जाते हैं, जैसे ही ज्ञान में आते हैं तो वो दुनिया वाले जिस चीज का नशा रखते हैं, अहंकार रखते हैं, वो अहंकार ब्राह्मणों को नहीं होता है, मैं फलाना फलाना हूं और ये सब। लेकिन सूक्ष्म अहंकार है ज्ञान का जो आ जाता है, क्योंकि समझ तो बढ़ जाती है ना, तो फिर अपने को राइट समझते हैं हर बात में, मैं जो कह रही हूं वही सही है, दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं, उनकी सही बात है तो भी हम समझने को तैयार नहीं। अगर सूक्ष्म अहम है तो, सभी ऐसा नहीं करते लेकिन अगर सूक्ष्म अहम है तो फिर हम अपनी बात पर बिल्कुल अड़ जाते हैं कि मैं ही जो कह रहा हूं वो सही है, लेकिन दूसरा अपने पक्ष से सही हो सकता है, हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, और अगर हम उसके नजरिए से बात को समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है वो भी अपनी जगह सही है। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कभी भी किसी को एकदम गलत मत कहो, दूसरे के विचारों को भी सम्मान दो, भले अपनी बात भी रखो लेकिन अगर उनके विचार हैं तो उनको भी मुझे सम्मान देना है। फिर होता है कई बार हमसे गलती हो गई, फिर अहम आता है बीच में किस रूप में, कि हम अपनी गलती नहीं मानते, उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और कई बार इसके लिए हम झूठ का भी सहारा लेते हैं, सिद्ध करना या जिद करना। बात छोटी सी होती है कई बार, लेकिन मैं कहीं कमजोर सिद्ध ना हो जाऊं, अगर मेरी गलती सबके सामने आ गई ना, और खासकर कई बार ऐसे होता है नाम रूप की बीमारी वाले जो स्थितियां बनती हैं, और उसमें अगर कोई इशारा देता है तो उसमें बदनामी वाली बात जुड़ी होती है, उसे हम किसी भी रीति से स्वीकार करना नहीं चाहते, उसको किसी ना किसी तरह से हम झूठ बोल करके भी ये सिद्ध करेंगे कि मैं राइट हूं। और बाबा कहता है प्यूरिटी माना रियलिटी, सच्चाई सफाई, वो भी है हमारे अंदर तभी प्यूरिटी कहेंगे। तो अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा। तो अगर कुछ है भी तो पहले हमें बाबा को सच बताना है। बाबा हमेशा कहते हैं मानो श्रीमद के विपरीत कोई हमसे बात हो भी गई और हम बाबा को सच सुनाते हैं तो वो आधा वहीं समाप्त हो जाता है, और जो रहता है हमारा उसके लिए बाबा से हमें शक्ति मिल जाती है। और इसीलिए चार्ट देने की बात कहते हैं कि रोज का रोज हमें बाबा को चाट देना है, यानी सारे दिन में जो भी कुछ ऊपर नीचे हुआ वो खाता मैंने आज ही उसको खत्म कर दिया। यानी हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। और फिर अगर हम उस बात को बहुत ज्यादा सिद्ध करते हैं तो परिस्थिति उलझती जाती है और कई बार बात इतनी बिगड़ जाती है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। तो अगर ये अंश वंश है हमारे अंदर तो ये मेरी रियलाइजेशन है, कोई दूसरा मुझे रियलाइज नहीं करा सकता। हम ही अपने आप को रियलाइज करके परिवर्तन कर सकते हैं। वो महसूसता की शक्ति हम अपने अंदर लाएं, पहले बाबा के सामने और जो फिर निमित आत्मा है। चलो सबके लिए बाबा नहीं कहता है, लेकिन जो हमारे निमित हैं कम से कम उनके सामने तो हमें सच स्वीकार करना होता है, फिर उनकी दुआएं भी हमें मिलती हैं, वो जैसे हमारे साथ होते हैं। फिर कई बार ये स्थिति भी पैदा होती है, मानो कोई किसी की तारीफ करता है हमारे सामने और हम उस तारीफ को नहीं स्वीकार करते हैं, तो ये भी सूक्ष्म अहम है। किसी की विशेषता है तभी उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन मानो उसके साथ हमारा कोई कर्म का हिसाब किताब है, हो जाता है। सभी आत्माओं का सभी के साथ तो नहीं होता है, पर जिसकी तारीफ की जा रही है उसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब है तो हम तुरंत उसको काटेंगे। हम क्या बोलना शुरू करते हैं, आप नहीं जानते उनको, हम जानते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। तो फिर ये भी सूक्ष्म अहम का अंश है। तो इस रूप में हमारे अंदर अहम ज्यादा आता है। तो संपूर्ण निर्विकारी बनना अर्थात इन विकारों के अंश वंश को जीतने का पुरुषार्थ करना, तो ये हमारा महीन पुरुषार्थ अब होना चाहिए, क्योंकि अभी हम अंतिम समय के बहुत समीप हैं। अभी मोटे पुरुषार्थ की बात नहीं है और इसलिए हमारी पवित्रता की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। और बाबा ने जैसे कहा, से हमने कहा कि पवित्रता माना सच्चाई सफाई भी है, तो जहां सच्चाई सफाई है वहां सच तो बिछो नच, ये बाबा कहता है, या सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सदा ही वो आत्मा प्रसन्न चित होगी। सत्य हमें निर्भय भी बनाता है और सत्य भले ही कई बार सत्य के कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बोला कि अपने को बचाने के लिए हम झूठ बोलना शुरू करते हैं, लेकिन अगर हम सच बोल देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमें वो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्राप्ति बहुत ऊंची और श्रेष्ठ होती है। सत्यता सदा ही महान है और इसीलिए हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं कि सत्य ज्ञान से ही बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। एक छोटी सी कहानी आती है इसके ऊपर कि एक बार एक चोर, वो कहीं सत्संग हो रहा था, वहां से वो गुजर रहा था, तो गुजरते गुजरते उसके कान में सच्चाई के ऊपर कुछ शब्द पड़े जो वो महात्मा सुना रहे थे कि सत्य की शक्ति कितनी महान है और सत्य की प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो उसने सोचा, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं इसको प्रयोग करके देखूंगा। तो उस रात को उसको महल में चोरी करनी थी, वो उसने पहले से प्लान किया हुआ था। तो वो महल के अंदर, वैसे तो चोर रास्ते से ही घुसते हैं अंदर, लेकिन उस दिन क्योंकि उसने सच को प्रयोग करने का सोचा था तो उसने कहा मैं सामने के रास्ते से ही जाऊंगा। तो वो सामने के रास्ते से घुसने लगा तो पहरेदार ने रोका उसको, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा चोरी करने जा रहा हूं। तो उसने कहा चोर कभी बोलेगा मैं चोरी करने जा रहा हूं? ये चोर नहीं हो सकता। तो उसने सोचा किसी काम से आया होगा, जाने दिया उसको अंदर। फिर ऐसे ही जहां खजाने में उसको चोरी करनी थी वहां भी सिक्योरिटी थी, वहां भी उसने यही कहा कि चोरी करने जा रहा हूं। तो उसने कहा मजाक करता है, ऐसे कोई खजाने के पास आकर बोलेगा मैं चोरी करने आया हूं? उसने भी जाने दिया उसको। उसको जो लेना था वो ले लिया उसने, पोटली बना ली और निकलने लगा। तो फिर उससे पूछा गया क्या लेकर के जा रहे हो? उसने कहा चोरी का माल लेकर जा रहा हूं। तो किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि कोई भी चोर हाँ इतनी आसानी से ऐसे स्वीकार नहीं करता है। तो सोचा होगा महल का कोई कर्मचारी कुछ ले जा रहा होगा, ऐसे सोच के उसको जाने दिया। और बाद में पता चला कि सचमुच ही महल में चोरी हो गई, और वो सचमुच जो आया था वो चोरी था, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा था। तो पकड़ लिया गया, उसको राजा के सामने पेश किया गया। तो राजा ने उसको पूछा कि तुमने सच बताकर के चोरी कैसे की और क्यों की। तो उसने बताया उसका राज कि मैं सत्संग में ऐसे सुना था और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सच बोलकर देखता हूँ, तो मेरे को चोरी करना बहुत आसान हो गया, मुझे जरा भी मुश्किलात नहीं आई चोरी करने में। तो राजा भी उसकी बात सुनकर के प्रभावित हुआ। उसने कहा कि इसका मतलब अगर इसको कुछ अच्छी शिक्षा मिले तो ये ऐसा व्यक्ति है जो उसे धारण करेगा। तो फिर इसे चोरी करने की क्या जरूरत है, ऐसी क्या मजबूरी होनी चाहिए इसको जो ये चोरी करे। तो राजा ने उसको ऑफर की, राजा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, और चोरी का माल भी तुमने दे ही दिया है वापस, लेकिन अगर तुम प्रतिज्ञा करते हो कि आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा तो फिर हम तुमको महल में नौकरी दे देंगे। तो उसने कहा अगर मुझे महल में नौकरी मिलती है तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है, धन के लिए ही तो मैं चोरी करता हूँ। तो उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई का फल कितना ऊंचा है, मैंने सिर्फ एक दिन सच बोला और क्या कितनी ऊंची प्राप्ति मुझे हो गई कि सीधा मैं महल में ही पहुंच गया। तो सच के रास्ते में कई बार कठिनाइयां जरूर आ सकती हैं, लेकिन वही बाबा कहता है कि सच की नाव चलती है डूलती है लेकिन कभी भी वो डूबती नहीं है। तो इसीलिए हमें भी प्यूरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी उसको समझना है। और रॉयल्टी बाबा कहता है कि आप आत्माएं पवित्रता के कारण इतनी श्रेष्ठ बनते हो कि केवल वर्तमान में ही नहीं लेकिन पूरे कल्प आपकी श्रेष्ठता रहती है। परम धाम में जब हम बाबा के साथ हैं तो भी पवित्रता के कारण जो ब्राह्मण आत्माओं की चमक है वो अन्य आत्माओं से अधिक होती है। जैसे हम कहेंगे आसमान में जो ज्यादा चमकते हैं तारे उन पर ज्यादा नजर जाती है, कम चमकते हैं वो तो हमें दिखाई ही नहीं देते। तो ये प्यूरिटी की चमक है जो परम धाम से ब्राह्मण आत्माओं में होती है, और जब सतयुग में जन्म लेते हैं तो फिर डबल ताजधारी बनते हैं पवित्रता के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं, राज्य अधिकारी होते हैं, वो सम्मान होता है, वो रॉयल्टी होती है। और जब द्वापर युग में आते हैं और पूजा शुरू होती है तो भी जितनी विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा होती है, वही देवी देवताएं फिर पूज्य होते हैं, उतना विधि पूर्वक इस संसार की किसी भी महान आत्मा और धर्मात्मा की पूजा नहीं होती है। हम देखते हैं देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है, उनके जागने की, उनकी उनके खाने की, उनके सोने की, उनके श्रृंगार करने की, जो भी कर्म है सारे दिन के, ईसा मसीह हैं, महात्मा बुद्ध हैं, अन्य धर्मों के जो भी धर्म पिता हैं उनकी भी पूजा होती है, लेकिन विशेष दिनों पर। वहाँ चर्च में लोग संडे संडे जाएंगे प्रेयर करने के लिए, है ना, लेकिन देवी देवताओं के मंदिर में कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन सुबह से लेकर रात तक, फिर बाबा कहते भी हैं कि वो विधि पूर्वक पूजा उन आत्माओं की होती है हर कर्म की जो संगम युग में संपूर्ण पवित्र बने हैं, जो उन आत्माओं का यादगार है जिन्होंने अमृत वेले से लेकर रात तक बिल्कुल बाबा के अनुसार अपनी दिनचर्या को चलाया है। और अगर अमृत वेले झुटका मारते हैं तो फिर बाबा कहते हैं जो मंदिर में आपके पुजारी हैं वो भी आपको उठाने के बाद क्या करने वाले हैं। ये विधि कई मुरलियों में बाबा ऐसे रमणीय रीति से सुनाते हैं, तो ऐसे बाबा ने सुनाया हुआ है कि जितना विधि पूर्वक हम चलते हैं उतना ही विधि पूर्वक जो हमारा पूज्य यादगार है उसकी पूजा भी होती है। तो वो श्रेष्ठता भक्ति मार्ग में भी चलती है, वो रॉयल्टी जो है हमारी, और ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी तो है ही सबसे श्रेष्ठ, फिर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। तो प्यूरिटी की ही पर्सनैलिटी और प्यूरिटी की ही रॉयल्टी हमारे इस जीवन की जो विशेषता है उस पर हमें संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है और वो बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं अंत में तो हो ही जाएंगे, हमारा अंतिम लक्ष्य तो यही है ना, तो फिर अंत में तो बनना ही है, तो अंत में बन जाएंगे या अभी से बनना है? अभी से बनना है। तो अभी जो भी कमी है हमारी इससे संबंधित, उस कमी को हम चेक करें और फिर अपने आप को जो बाबा ने विधियां बताई हैं उस अनुसार चेंज करें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद सविता दीदी जी का। प्योरिटी की गहराई क्या है आज आपसे हमने जाना। आप विशेष शांतिवन में भी शिविर चल रहे हैं, भटिया चल रही, उसमें भी व्यस्त थे, लेकिन हमारे लिए आप खास पांडव भवन ऊपर आए हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
मित्रता के राह पर पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता के राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है।